ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆர் ஜோ பீத் சுகா ஹை சோக், உஸ்கே லியே சோக், சோக உஸ்கே லியே ஹோதா ஹை ஜோ பீத் சுகா ஹை, ஹோ சுகா ஹை. मैं ऐसा था, ऐसा कर सकता था, दुखी होता है व्यक्ति. मैंने ऐसा, मेरे अंदर पहले इतनी बड़ी ताकत थी, मैं जब कर सकता था ऐसा ऐसा कार्य. बहुत से लोगों को मैं सुनती हूँ, बुजुर्ग लोग बैठते हैं बेचारे, और बैठ करके वो आपस में बात करते हैं कि देखो पहले मैं ऐसा कर लेता था. उन्हें यही दुख होता है कि मैं अब नहीं कर पाता, तब मैं कर लेता था. जो तब कर सकते, जो बीत चुका है, जो निकल चुका है, जिससे अब कोई संबंध नहीं रह चुका है, उसको याद करके हम शोक करें, वह कोई बुद्धिमानता की बात नहीं है ना, वो कोई विचारता की बात नहीं है. जब अब नहीं कर सकते हैं तो जो अब कर सकते हैं, बोले अब क्या कर सकते हैं, अब करने के लिए क्या रहा. जब करते थे तब कर सकते थे हम, बेचारे बहुत वो होते हैं. परंतु मैं कहती हूँ अब क्या कर सकते हैं, बोले अब भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं, भगवान का चिंतन तो कर सकते हैं, सत्य का विचार तो कर सकते हैं. उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है नारायण, भगवान का भजन तो हमेशा किया जा सकता है. तो कहने का अर्थ था कि वो शोक भी नहीं करता, मोह भी नहीं करता. जो बीत निकल गया है उसके प्रति उसके अंदर मोह नहीं है, और जो वर्तमान है उसके लिए उसमें मोह नहीं है, भविष्य के लिए उसकी चिंताएं नहीं. एकत्व मन पश्यति, वो सब में एकात्म भाव, माने एक रस, एक भाव रख करके सभूत वर्तमान भविष्य इस प्रकार के काल का भेद नहीं करता. ज्ञानी की दृष्टि में ये काल भेद समाप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि एक अभेद परमात्म तत्व में स्थिर होती है, और उस परमात्म तत्व के दर्शन को लेकर, परमात्म तत्व में स्थित होकर वो सर्वत्र एक आत्म भाव में विद्यमान रहता है. ऐसा माँ श्रुति कहती हैं. तो श्रुति के ईशावास्य उपनिषद के इस सातवें मंत्र के द्वारा हमें भगवान के सर्व व्यापक स्वरूप का, जो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, उस उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है. वास्तविकता में विचार करें तो भगवान जो आत्मदर्शन है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, मैं कई बार पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की. तो इन सात मंत्रों में, प्रथम सात मंत्रों में हमें इस प्रकार की दृष्टि भगवती प्रदान करती हैं, श्रुति प्रदान करती हैं, कि जिस दृष्टि से हम परम आनंद की प्राप्ति कर सके, और आनंदमय स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप को हम प्राप्त कर सके, उसके लिए हमें ये दिव्य दृष्टि दी. पहली बात कि ईशावास्य विदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत, हमें इस जगत के लिए क्या भाव करना है. संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादनीय है, आच्छादित है. जैसे जल नीचे है, ऊपर काई उसको ढक लेती है, काई जल को ढक देती है, और ऐसा लगता है कि इसके अंदर जल है ही नहीं, परंतु काई को हटाओ तो भीतर जल साफ नजर आता है, दिखाई पड़ता है. परंतु जल को आच्छादित करने वाली जो काई है, बोली वो आई कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बोले वो भी तो जल से ही निकली है. तो जैसे जल के ऊपर काई आ जाती, उसी प्रकार इस संपूर्ण जगत को ईश्वर से आच्छादन कर लो, माने ढक लो. सारा जगत ईश्वर, इसके अंदर जगत के रूप में स्वयं परमात्मा है, ऐसी दृष्टि करके संसार में रहे, आत्मरक्षा करें, और जीवन में लोभ न करें. पहली बात, उपनिषद ने लोभ के लिए हमें बताया। और कहीं धन कमाकश्च स्वधनम माने लोभ रहित होकर जीवन जिए। दूसरी दृष्टि हमें ये दी, कुर्वन्नेह कर्माणि, जीवन को जीने के लिए कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, कर्म करते हुए संसार में जीने की इच्छा करें, कुर्वन्नेह कर्माणि दूसरी दृष्टि दी। और तीसरी बात हमारे जीवन में विचारणी ये है कि यदि हम ऐसा ये दोनों मार्ग के न कर सके तो स्थिति क्या होगी। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृत, असुरिक लोगों में हमें भेज दिया जाएगा और जिससे कि पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम का चक्र हमारे लिए शुरू हो जाएगा। और परमात्मा चौथे मंत्र में हमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके बताया चौथे और पांचवें श्लोक में कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो चल भी है और अचल भी है, वो अचल और चंचल ये दोनों ही रूप, वो नजदीक भी है और दूर भी है, अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है, ज्ञानियों के लिए बहुत पास में है, आत्मज्ञानियों के लिए वो चंचल भी है अर्थात बाह्य में भी है, कार्य रूप में भी है और कारण रूप में भी है। कार्य कारण रूप से वो दोनों भेद करके नहीं, वह तो एक अभेद है, कार्य रूप भी वो और कारण रूप भी वो, कार्य रूप जगत कारण रूप आत्मा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है ये कह के बताए। और जो इस भेद को मिटा चुके हैं ऐसे अभेद दृष्टा, अभेद दृष्टि रखने वाले मनुष्य की, अभेद दृष्टि रखने वाले साधक की, वो आत्मवेता की, जो जिसकी दृष्टि अभेद को प्राप्त कर गई, उसकी रहनी कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसे आप कैसे उसका दर्शन कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, इन दो मंत्रों में छठे और सातवें मंत्र में बताया गया कि वह किसी से घृणा नहीं करता। हम लोग ज्ञानी की पहचान क्या है, बोले ज्ञानी की पहचान ये नहीं है कि वो संसार के ऊपर उड़ने लगता है, ऐसी उसकी पहचान नहीं है। और ऐसी उसकी पहचान नहीं है कि वो कुछ चमत्कार करने लग जाता है, ऐसी उसकी कोई पहचान नहीं है कि वो संसार से बिल्कुल कुछ अलग सा बन जाता है। बोले नहीं, उसकी पहचान क्या है, उस अभेद ज्ञानी की पहचान क्या है कि उसके अंदर ना तो राग है ना द्वेष है। राग नहीं होगा तो घृणा नहीं होगी, उसके अंदर घृणा भी नहीं है और मोह भी नहीं है, ममत्व भी नहीं है, उसके मोह से अभिप्राय है, उसके अंदर ममक तो नहीं है, मैं मेरा मेरी की कहीं कोई बात नहीं है, उसकी कहीं मैं मेरी का भाव उसके अंदर में नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि उसके अंदर किसी चीज का शोक भी नहीं होता, ना तो उसमें शोक है और ना ही उसमें मोह है। इन तीनों से रहित, घृणा मोह और शोक से रहित किसका दर्शन है, बोले ज्ञानी का जीवन है जिसे उस तत्व को समझा हुआ है। जब हमारे अंदर से इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमसे ना तो मोह छूटता है, ना हमसे घृणा नफरत छूटती है और ना हमसे शोक छूटता है, और हम तब विचार करें कि हम इस कौन सी स्थिति में हैं, क्या हमारा सत्संग, जो हम सत्संग किए हैं आज तक, जो हम सत्संग कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये सत्संग हमको पच रहा है, इस सत्संग को हमने पचाया है, इस सत्संग का हमने रस बनाया है, क्या जीवन में क्या इसलिए सत्संग सुना है कि ये सत्संग जैसे भोजन करके उसका रस बन करके हमारे शरीर को पुष्ट करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर में ताकत बनाता है, ओज बनाता है, रक्त बनाता है, शरीर को बल मिलता है। उसी तरह से सत्संग यदि पच गया होता, सत्संग जो हमने आज तक किया सुना उसको हमने अपने जीवन में पचाया होता तो हमारे जीवन में रस बन करके आता। बोले रस क्या बनेगा? रस यही बनेगा कि हमें कहीं किसी चीज से मोह नहीं हो। मोह की बात तो ये है नारायण, छोटी छोटी चीजें हमसे नहीं छूटती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हमसे नहीं छूटती हैं, उनके प्रति भी एक आसक्ति बनी रहती है, उनके अंदर भी संग्रह की भावना बनी रहती है। शोक की बात, छोटी सी चीज नुकसान हो जाए, छोटी सी चीज कोई बिगड़ जाए, कोई खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसके प्रति हमारे अंदर बड़ा भारी दुख रहता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। और न तो मोह छूट कम हुआ, न शोक छूटा, न घृणा छूटी, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी अवस्था है तब ये सब क्या हो, कैसे हो, उसके लिए निराश फिर भी मत होइए। मैं तो ये कहूंगी फिर भी निराश मत होइए, भगवदाश्रय कीजिए, भगवान से प्रार्थना करो। इसके लिए क्या कर सकते हो? बोले भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि और प्रार्थना करके हृदय से पुकार करें। पुकार तो अध्यात्म का प्रवेश पत्र है। जैसे किसी परीक्षा में बैठने के लिए पहले प्रवेश पत्र भरा जाता है, और जिसका प्रवेश पत्र भरा गया है उसी को परीक्षा देने के लिए बिठाया जा सकता है, उसी भांति अपने हृदय से भगवान के आगे सच्चे हृदय से पुकार करो, पुकारो उसे, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप कृपा करें, मुझे इतना बल दें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें, और आपकी कृपा से ही ये सब हो सकता है। पुकारो नारायण, पुकार कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान को पुकारोगे भगवान जरूर सुनते हैं। पुराणों में एक नहीं अनेक उदाहरण है। द्रौपदी ने पुकारा भगवान चले आए, एक हाथी ने पुकारा भगवान चले आए, गज ने पुकारा भगवान चले आए, अजामिल ने पुकारा भगवान चले आए, गणिका ने पुकारा भगवान चले आए, जटायु ने पुकारा भगवान चले आए। अर्थात ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पुण्य आत्मा तपस्वी नहीं हुई, ज्ञानियों ने ही, जिन्होंने बहुत बड़ा तप किया उन्होंने पुकारा, उन्होंने याद किया तभी भगवान आए। बोले ऐसे नीच कर्म करने वाले, अजामिल जैसा नीच कर्मी, गणिका जैसी नीच कर्मी ने भी पुकारा तब भी भगवान चले आए, और यहाँ तक गज ने पुकारा, हाथी ने पुकारा तब भी भगवान चले आए, जटायु पक्षी है उन्होंने पुकारा तो भी भगवान चले आए। तो कहने का अर्थ, जिसने पुकारा है तो यदि उनकी पुकार सुनी जाती है तो आपकी पुकार भी जरूर सुनी जाएगी, जब यदि आप हृदय से पुकारोगे, हृदय से पुकार कर भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल है। और प्रार्थना करते समय प्रार्थना में आपका पूरा पूरा समर्पण भगवान के लिए हो, और समर्पण भगवान के लिए करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान के लिए समर्पण करते हुए भगवान से जब प्रार्थना करेंगे, पुकार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी भी सुनी जाएगी। और इससे क्या होगा? बोले इस समर्पण में आप मैं और मेरा छोड़ करके, भगवान ने इस समर्पण के लिए रास्ता दिया है ना आपको, मामेकम शरणम ब्रज, इसलिए भगवान ने कहा कि तू मेरी शरण में आ, इसीलिए भगवान ये हमसे नहीं छूट रहा है, मोह नहीं छूटा, जितना छुड़ाना चाहते हैं उतना उसमें उलझते चले जाते हैं, और जितना त्यागना चाहते हैं, जितना छुड़ाना चाह रहे हैं, उतना ही और उलझते चले जा रहे हैं। बोले नहीं छूट पा रहा है, तो तब भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरा ये मोह का बंधन आप छुड़ाइए, इससे छुड़ाइए। इसमें क्या, ऐसा करने से क्या होगा? बोले भगवान के साथ जुड़ेंगे, संसार से छूटेंगे, तो धीरे धीरे जब भगवान को पुकारना शुरू करेंगे ना, भगवान को याद करना शुरू करेंगे, भगवान के तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, परमात्मा का की प्रार्थना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 करते करते आपका ममत्व जो संसार के प्रति बना हुआ है, वो ममत्व ढीला पड़ता चला जाएगा और भगवान में ममत्व बढ़ता चले जाएगा। वो मोह जो मोह संसार के साथ था, वो मोह आपका भगवान के चरणों में बढ़ता चला जाएगा। यदि भगवान के चरणों में, किसी सत्पुरुष के चरणों में ऐसा मोह हो जाए, तो उसके लिए भागवत में कपिल भगवान ने एक बहुत अच्छी बात माँ देवहूति से कही। माँ ने जब पूछा, बेटा इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, इंद्रियां भोगों में चली जाती हैं और भोग इंद्रियों में आ जाते हैं, और इन भोगों को भोगते हुए, चित्त शांत भोगते हुए भी इस मन, इस इन चित्त की तृप्ति नहीं होती, शांत नहीं होती, ये इंद्रियां बड़ी अशांत अतृप्त रहती हैं। तब ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? भगवान कपिल ने उपदेश देते हुए कहा कि माँ, प्रसंग मंजर पाशमान कवयो विदुर, ऐसा संसार में कौन सा व्यक्ति है जब जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं हो, परंतु यदि ऐसी आसक्ति, जैसी आसक्ति आप कह रहे हैं भोगों के साथ हो गई है, जैसा मोह भोगों के साथ हो गया है, ऐसा मोह यदि किसी साधु सुव्रतम मोक्ष द्वार मपावृतम, माता यदि ऐसा, ऐसी आसक्ति, ऐसा मोह किसी सत्पुरुष के साथ में हो जाए, तो मैं कहता हूँ मोक्ष द्वार मपावृतम, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। परंतु वो साधु कैसा होना चाहिए, वो लक्षण आगे वर्णन किए हैं, विषय अलग है, परंतु मैं केवल इतना भर आपको कहना चाहती थी, मोक्ष द्वार मपावृतम, स साधु सुकृतम मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कहते हैं यदि इस प्रकार के का मोह, जैसा कि मोह, जैसा कि मैं, मेरा, मेरी, हमें संसार के लिए है, ये मैं, मेरा, मेरी का नाता भगवान के साथ जुड़ जाए, परमात्मा के साथ जोड़ ले, तो संसार से मोह अपने आप कम हो जाएगा। संसार से मोह कम कम हो गया, ये आपको भी एहसास नहीं होगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। बोले ऐसे पता नहीं चलेगा, जब फल पक जाता है तो पेड़ उसे अपने आप छोड़ देते हैं। फल जब पकने पर वृक्ष उसे पकड़ के अपने पास नहीं रखते, उसे छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा जब आपका मोह भगवान में बन जाएगा। इसलिए ऐसे मोह छोड़ना बड़ा कठिन है, और ऐसे कहो कि तुम संसार की चिंता मत करो, चिंता मत करो, कितना कहते रहो, पर बहुत से लोग हैं, क्या करें माता जी, मनुष्य का स्वभाव है ना, चिंता किए बिना रहता नहीं है, इसलिए चिंता तो हो ही जाती है, चिंताएं तो करते नहीं है, चिंता हो जाती है। भाई उसके लिए भी एक ही उपाय है, भगवान का चिंतन करोगे तो चिंता मिटेगी, उसको मिटाने का एक ही उपाय है। और शोक को दूर करने के लिए, बोले संसार में कोई चिन्ह शोक हो जाता है, दुख शोक तो आ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो आ जाता है, तो सोचो जो दुख आपके पास आया है, जो कष्ट आपके पास आया है, तो आखिर इसको किसी ने भेजा है। जो शोक बनकर के दुख आपके पास आया है तो उसके लिए आप ये विचार करो कि इसे किसी ने, जो आया वो अपने मन से नहीं आया, जो आया सो अपने मन से नहीं आया, इसे किसी ने भेजा तभी तो आया। और यदि आपकी दृष्टि भेजने वाले में चली गई कि इसे किसने भेजा है, उसके लिए बहुत से लोग कह देते हैं जो आया है भाई वो तेरे प्रारब्ध से लिखा हुआ आया है। परंतु भक्त ये कहता है, विचारक ये कहता है, साधक ये कहता है कि नहीं, प्रारब्ध को मैं नहीं मानता। वो क्या मानता है? बोले ये जो कुछ आया है इसे भेजा गया है। बोले किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। और जब उसकी दृष्टि परमात्मा में चली जाती है, भगवान में चली जाती है, तो फिर जो भेजा है वो गौर हो जाता है। जिसने भेजा है उसे देख करके वो इतना रीझ जाता है, इतना खुश हो जाता है कि भेजने वाला कैसा है। बोले भेजने वाला तो परम सुहृदय है, उसके बराबर सुचिंतक हमारे लिए, उसके बराबर हितेशी हमारे लिए, उसके बराबर मंगलकारक हमारे लिए और कौन हो सकता है? परमात्मा से बढ़कर हमारा हितेशी, हमारा शुभ चिंतक और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो भेजने वाला परम हितेशी है, मेरा परम हित चाहने वाला है, वो मेरा सदैव शुभ चिंतक है, वो मेरे लिए हमेशा शुभ की कामना करते हैं। इसलिए उन्होंने भेजा है तो अच्छे के लिए भेजा है। तो भक्त देखता है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार दो मित्र यात्रा के लिए निकले। तो यात्रा में चलते चलते एक घना पेड़ मिला और पेड़ की घनी छांव में दोनों मित्र बैठ गए। तो इतने में एक मिने दूसरे मित्र की गोद में सिर रखा और सिर रखने के साथ नींद आ गई, सो गया। उसने देखा कि मेरा मित्र सोया हुआ है। और इतने में वो जिस पेड़ के नीचे जिसकी छांव में वो बैठे हुए थे, उस पेड़ में एक सर्प रहता है और वो पेड़ से उतर के नीचे आया और उस व्यक्ति को जो सोया हुआ है उसे डसने के लिए आगे बढ़ा। जब डसने के लिए आगे काटने के लिए जा रहा था तो जो मित्र जाग रहा था उसने सावधान किया सर्प। सर्प मुखरित हो गया, बोल पड़ा। उसने पूछा तुम किसे क्यों मारना चाहते हो? वो तुम क्या चाहते हो? सर्प से पूछा कि चाहते क्या हो तुम? उसने कहा मैं खून चाहता हूं इसका। क्यों खून चाहते हो? बोले खून इसलिए चाहता हूं कि पिछली बार इसने मेरे शरीर से खून निकाला था, अब की बार मैं इसके शरीर से खून निकाल लूंगा तो मुझे शांति हो जाएगी। तुम्हें खून ही चाहिए ना? बोले हाँ मुझे खून चाहिए, सर्प ने कहा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाली और अपने मित्र के गर्दन में जैसे उसने चाकू की धार लगाई तो इतने में धार लगते ही आंख खुली। उसने देखा और देखा कि उसके मित्र के हाथ में चाकू है। उसने अपने मित्र के हाथ में चाकू देखकर आंख बंद कर ली और उसने जरा सा धार लगाकर, कट लगाकर खून निकाला और सर्प को खून दिया। सांप वापस लौट गया और थोड़ी देर बाद मित्र उठ खड़ा हुआ, आगे की यात्रा में जाना था। तो जिस मित्र ने उसके कंधे में से खून निकाला था उसने कहा मित्र एक बात पूछूं तुमसे? बोले पूछो। कि एक बात ये बताओ कि मेरे हाथ में चाकू देखकर तुम्हें कोई डर नहीं लगा और मैंने तुम्हारे गर्दन में चाकू गड़ाया भी और तब भी तुम्हें कोई डर नहीं लगा? तो उसने कहा मित्र मैंने चाकू तो तुम्हारे हाथ में देखा पर इसमें डर लगने की क्या बात थी? चाकू देखकर मैं क्यों डरता? चाकू देख करके मैं क्यों डरता, क्योंकि मैंने देखा कि चाकू तुम्हारे हाथ में है, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। कि उसे अपने मित्र पर इतना भरोसा है कि मेरा मित्र कभी मेरे लिए अनिष्ट, मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए जो धारदार चाकू है उसके हाथ में देखने के बाद भी उसके अंदर चाकू का कोई भय नहीं आया, उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने मित्र पर विश्वास है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि दुख अर्थात शोक हमारे सामने आएगा भी, तो वो शोक रूपी दुख को भी देखता है कि ये मेरे प्रभु के हाथ में है, मेरे भगवान के हाथ में है, इसलिए उसे उसका कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो भगवान इसको यूं नहीं, आत्मभाव से यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां भगवत भाव कर लीजिए। भगवत भाव करो अर्थात भगवत स्वरूप कहो, आत्म स्वरूप कहो, बात अलग नहीं है, बात एक ही है। और विषय को सरल करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि भगवत भाव लेकर, अपने इष्ट का भाव लेकर, ब्रह्म का भाव लेकर आप अपने शोक, घृणा, मोह और शोक को दूर कर जीवन का परम सुख ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्त में कोई विराम देती हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।